रखता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 9-11। तशरी, माल और औलाद का जिक्र तो खास तौर पर इसलिए किया गया है कि इंसान ज्यादातर उन्हीं के मफाद की खातिर ईमान के तगाजों से मुंह मोड़कर मुनाफिकत या ज़ोफ़ ईमान या फिस्क और नाफरमानी में मुब्तला होता है, वरना दर हकीकत मुराद दुनिया की हर वो चीज़ है जो इंसान को अपने अंदर इतना मशगूल करे कि वो खुदा की याद से गाफिल हो जाए। ये याद खुदा से गफलत ही सारी खराबियों की असल जड़ है। अगर इंसान को ये याद रहे कि वो आज़ाद नहीं है बल्कि एक खुदा का बंदा है और वो खुदा उसके तमाम आमाल से बाखबर है और उसके सामने जाकर एक दिन उसे अपने आमाल की जवाबदेही करनी है, तो वो कभी किसी गुमराही और बदअमली में मुब्तला ना हो। और बशरी कमजोरियों से इसका कदम अगर किसी वक्त फिसल भी जाए तो होश आते ही वो फौरन संभल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो एक आजमाइश हैं और अल्लाह ही है जिसके पास बड़ा अजर है। लिहाजा जहाँ तक तुम्हारे बस में हो अल्लाह से डरते रहो और सुनो और इताअत करो और अपने माल खर्च करो, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। जो अपने दिल की तंगी से महफूज रह गए बस वही फला पाने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को खर्ज हसना दो तो वो तुम्हें कई गुना बढ़ा कर देगा और तुम्हारे खुसूरों से दरगुजर फरमाएगा। अल्लाह बड़ा खदरदान और बुर्दोबार है, हाजिर और गायब हर चीज को जानता है, जबरदस्त और दाना है। सूरह अत-तगाबुन आयत नंबर 15-18। तशरीफ, इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी निगाह में रहना चाहिए जिसे तिब्रानी ने हजरत अबू मालिक अशअरी से रिवायत किया है कि तेरा असल दुश्मन वो नहीं है जिसे अगर तू कत्ल कर दे तो तेरे लिए कामयाबी है और वो तुझे कत्ल कर दे तो तेरे लिए जन्नत है, बल्कि तेरा असल दुश्मन हो सकता है कि तेरा अपना वो बच्चा हो जो तेरी ही सुलभ से पैदा हुआ है। फिर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा वो माल है जिसका तू मालिक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ भी और सूरह अनफाल में भी ये फरमाया है कि अगर तुम माल और औलाद के फितने से अपने आप को बचा ले जाओ और उनकी मोहब्बत पर अल्लाह की मोहब्बत को गालिब रखने में कामयाब रहो तो तुम्हारे लिए अल्लाह के हाँ बहुत बड़ा अजर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह को अच्छा खर्च देते रहो। सूरह मुज़म्मिल जुज आयत 20। तशरी, मुफस्सरीन का इस पर इत्तेफाक है कि इससे मुराद पंच वक्ता फर्ज नमाज और फर्ज ज़कात अदा करना है। इब्न ज़ैद कहते हैं कि इससे मुराद ज़कात के अलावा अपना माल खुदा की राह में सर्फ करना है, खा वो जिहाद फी सबीलिल्लाह हो या बंदगान खुदा की मदद हो या रिफाए आम हो या दूसरी भलाई के काम। अल्लाह को खर्च देना اللہ کو قرض دینے اور اچھا قرض دینے کے مطلب کی تشریح ہم اس سے پہلے متعدد مقامات پہ کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے؟ سورہ اللیل آیت نمبر 11۔ تشریح، دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ایک روز اسے بہرحال مرنا ہے اور وہ سب کچھ دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے جسے اس نے یہاں اپنے عیش کے لیے فراہم کیا تھا۔ آخر اپنی آخرت کے لیے کچھ کما کر وہ ساتھ نہ لے گیا تو یہ مال اس کے کس کام آئے گا؟ خبر میں تو وہ کوئی کوٹھی، کوئی موٹر، کوئی جائیداد، کوئی جمع پونجی لے کر نہیں جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح و درست دین ہے۔ سورہ بینہ آیت 5۔ صدق اللہ العظیم۔